जटायु जी यहाँ मारे गए थे। रावण और जटायु का यहाँ युद्ध हुआ था। पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने अपने लिए यही प्राण त्यागे थे। और देखो यहाँ खर को मारा, दूषण को मारा, तृष्णा को मारा। ये देखो पर्णशाला आ गई, वैसी की वैसी पर्णशाला दिख रही है, कितनी अच्छी दिख रही है। यहीं से रावण तुमको ले गया था। ओहो, इस पर्णशाला में तुम्हारे रहित, तुमसे रहित होकर जब मैंने इसमें प्रवेश किया था, ये पर्णशाला ऐसी लगती थी कि जैसे कोई ऐसी गंभीर गुफा हो, जिस गुफा में जाने के बाद कोई हमारे प्राण ले लेगा, ऐसे हमको खाने जैसे दौड़ती हो, ऐसी पर्णशाला लगती थी। अब देखो कितनी अच्छी पर्णशाला है। ये देखो ये गोदावरी, इसमें तुम स्नान करते थे, इसका जल पीते थे। इस गोदावरी का चप्पा चप्पा हमने छान डाला तुम्हारे लिए। और ये देखो अगस्त ऋषि का आश्रम, कितने अच्छे अच्छे केले के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ तो तुम आए ही थे। ये देखो सुतीक्ष्ण जी का आश्रम, पहचानते ही हो सीता जी। और सर्वंग आश्रम है, ये सर्वंग आश्रम भी है, ये तो वही है। ये देखो सर्वंग आश्रम वही है जहाँ पर इंद्र आया था, और इंद्र ने आके हमको शस्त्र दिया था, और यही शस्त्र आगे हमारे काम आया था। ये देखो यहाँ पर कबंध को अपन ने मार करके उसको गाड़ा था। और ये देखो अत्रि ऋषि का आश्रम आया। देखो उस तपस्विनी ने तुमको कितना अच्छा उपदेश दिया था। उस तपस्विनी ने तुमको जो अलंकार दिए, तुमको जो वस्त्र दिए, तुमको जो तेज दिया, तुमको जो उपदेश दिया, वो देखो उस बूढ़ी माई का उपदेश तेज तुम्हारे लिए कितना रक्षा का काम आया। इसलिए भाई बड़े बूढ़ों की शिक्षा छोटों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये देखो ये चित्रकूट है, यही तो कैकेयी का पुत्र भरत मेरे पास आया था। ये देखो ये यमुना नदी आ गई। यहाँ देखो ये भरद्वाज ऋषि का आश्रम आ रहा है। ये देखो ये गंगा आ रही है। ये देखो वो निषाद राज का श्रृंगवीरपुर दिखाई देता है, और वो देखो वो सरयू नदी दिखाई दे रही है, और वो रही मेरी अयोध्या, मेरी पिता की नगरी अयोध्या। तो तथा सर्वे बानरा, सब बानर उछल उछल करके उसमें देखने लगे, अरे अयोध्या, अरे अयोध्या, 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 ऐसे वो देखने लगे और प्रणामम, और सबके सब प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा सीता जी तुम भी प्रणाम करो। सीता जी ने भी प्रणाम किया। क्यों? कि जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्म भूमि भाई सदाई वंदनीय होती है। जिस भूमि ने हम लोगों को धारण किया, जिस भूमि ने हमारा पालन किया, जिस भूमि के अन्न जल से हम लोग बड़े हुए, उस भूमि को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तब सब बानर बड़े प्रसन्न हुए और उत्पुत्य उत्पुत्य संधिष्ठा हो उछल उछल करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर चढ़ चढ़ करके, और वे पुरी को देखने लगे। बड़ी सुंदर उनको अयोध्या पुरी लगी। अरे बहुत ऊंचे ऊंचे महल है, पताकाएं यहाँ पर जो है हिल रही हैं, और घोड़ों की आवाज आ रही है, हाथियों की चिंघाड़ हो रही है। बड़ी अच्छी अयोध्या, बड़ी अच्छी अयोध्या। अब देखो आज पंचमी तिथि है। वैसे तो यूं तो अपन कथा तो आज छठे दिन की है, षष्ठी है आज, लेकिन इसमें लिखा है कि देखो आज पंचमी तिथि है, कल छठवीं के दिन अपने यहाँ अयोध्या में जाएंगे। तो इसलिए पास में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चलते हैं। तो वो विमान को पहले ही उतार लिया और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वो उतर गए। उतरने के बाद भरद्वाज ऋषि से पूछा, हे भगवान, हमारी अयोध्या में सब कुशल मंगल है ना? कई दिनों से कोई समाचार नहीं था। हमारी सब माताएं जीवित है ना? कोई माँ जो है बीच में तो नहीं गई? भरत है, भरत जी भी सब प्रकार से ठीक है ना? हमारे अयोध्या का कुशल मंगल है? भरद्वाज ऋषि राम जी की ओर देख देख के कहने लगे, अरे राम, भरत ने तुम्हारे समान जटा धारण कर रखी है, तुम्हारी आज्ञा के अंदर वो बेचारा दिन दिन करके दिन निकाल रहा है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ओहो, मुझे वो सब बात याद है राम। तुमने पहले ये वलकल वस्त्र पहने थे, तुम तीनों इस विशाल जंगल में गए थे, तुमने धर्म की प्राप्ति के लिए सब कुछ किया था, तुम अपने घर से पैदल ही निकल गए, सब भोगों का तुमने त्याग करके वनवास को उसी प्रकार से स्वीकार किया जैसे कोई स्वर्ग का व्यक्ति स्वर्ग की चीज को स्वीकार करता है। और पहले मैं तुमको देखकर अपने मन में बड़ा करुणित हो गया था, मेरे मन में करुणा जागृत हुई थी, कैकेयी के वचनों से जब तुम वन में गए तो मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ। आज मैं तुमको देखता हूं, तुम्हारे साथ इतने बानर, तुम्हारे साथ इतने मित्र बांधव, इनको देख करके मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्हारे जीवन में जो जो सुख दुख आए राम मुझे मालूम है। तुम जनस्थान में गए थे, तुमने संसार की रक्षा के लिए, सब तपस्वियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए कष्ट सहा है। देखो राम, मैं बताता हूं, मारीच नाम का राक्षस आया था हिरण बनकर के, सीता जी के कहने से तुम उसके पीछे पीछे गए थे, उसने माया के द्वारा तुम्हारा और लक्ष्मण का, तुम्हारा और नहीं लक्ष्मण का और सीता का नाम लिया था, पीछे से साधु का वेश बना करके रावण आया था, उस सीता को ले गया था, फिर आपने कबंध के दर्शन किए थे, पंपा सरोवर पर गए थे, सुग्रीव के साथ मित्रता करके और बाली को मारा था, फिर बंदरों को आपने सब जगह सीता की खोज के लिए भेजा था, फिर आपने समुद्र के ऊपर पुल बनाया था, और फिर आपने रावण पर चढ़ाई कर दी थी। अच्छा बताओ, उस युद्ध के अंदर एक दिन आपने लंका के अंदर कैसी रात में आग लगाई थी? उस समय में रावण का सोचा समझा सब युद्ध का मोर्चा धरा का धरा रह गया। और फिर उस युद्ध के अंदर निकुंभिला क्षेत्र में मेघनाद को मारने के लिए गए थे लक्ष्मण जी, फिर रावण मारा गया और वहां देवता लोग आए, और भी जो कुछ घटनाएं हुई हैं ये सब बताओ, घटना हुई कि नहीं? राम जी ने कहा हाँ महाराज हुई। तो भाई ये सब बातें मैंने तपस्या से जान ली थी, और कुछ कुछ बातें इधर उधर की बातें ये मेरे शिष्य जो मेरे पास पढ़ते हैं ये भी इधर उधर की बातें सुन के ले आते थे। अयोध्या की बातें तो मैंने बच्चों से सुनी, और तुम्हारी बातें मैंने तपस्या से देखी, क्योंकि तपस्या से देखने लायक तो तुम्हारी लीला है, राज्य कैसा है कैसा नहीं है ये तो सब बच्चों लोगों की बातें हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, तपस्या करो तो भगवान के दर्शन करो, और दुनिया की बातें तो हमारे बच्चे हमको आकर यही सुना देते थे। देखो आज तुम यही रहो, अब कल अयोध्या जाना, आज तो हमारा तुमको आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। राम जी ने कहा अच्छी बात है। तो राम जी ने कहा अच्छी बात है। तब भरद्वाज ऋषि प्रसन्न होकर के कहने लगे, सुनो राम, हमने तपस्या से जिस प्रकार से तुम्हारी लीलाएं देखी हैं, उसी तपस्या के कारण से आज हम एक बहुत बड़ा वरदान तुमको देते हैं कि तुम्हारे साथ में आए हुए जितने ही बानर मंडली हैं, इनको ले जाकर तुम अयोध्या में इनके लायक क्या खिलाओगे? अभी तो भाई कोई फल पुष्प भी नहीं है, ऋतु का कोई फल भी नहीं है, लेकिन क्या खिलाओगे तुम? हम बोलते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, यहां से लेकर लंका तक सब वृक्षों में फल लग जाए, सब वृक्षों में अच्छे अच्छे मधु आ जाए, खूब शहद बन जाए, और अमृत के समान मीठे मीठे वे फल खा लेने के बाद फिर उनकी पूर्ण तृप्ति हो जाए, और अयोध्या तक का मार्ग एकदम स्वच्छ और स्पष्ट हो जाए। इस प्रकार से बड़े प्रेम के अंदर डूबे हुए अगस्त्य महाराज ये भरद्वाज महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। उसी समय में वो देखो देखो राम, देखो हमारे आश्रम से श्री गणेश हो गया, हमारा आशीर्वाद फल फलीभूत हो गया, वृक्ष एकदम हरे झरे हो गए। जो निष्फल थे निष्फला फलिनश्चासन, जो निष्फल थे वो फलवान वृक्ष हो गए, विपुष्पा पुष्पशालिन, फूल भी नहीं लगते थे, खूब फूलों से वो भर गए, शुष्क थे वे समग्र पत्रा, खूब पत्ते निकले आए उनमें, ऐसे भाई वृक्ष थे उनमें खूब मधु धाराएं टपकने लग गईं। अब वो बंदर कहे कि अब तो हमको छुट्टी देवे, खूब ये फल खाए, खूब हम इनका रस पिए, तो गच्छताम अभवंस्तदा। तो भाई सबके मन में बड़ी खुशी हुई, सब वहाँ खूब फल वगैरह खाने लगे, रस पीने लगे और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में बड़े आनंद के साथ रहे। इधर महाराज राम जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आने से पहले हनुमान को बुलाया, हनुमान को बुला करके कहा, हनुमान तुम यहां से अयोध्या जाओ और अयोध्या जाकर के तुम इस बात को खबर दे, बीच में तुमको निषाद राज मिलेंगे, निषाद राज को मेरा कुशल क्षेम कह देना है और उसके बाद तुम अयोध्या जाओ, अयोध्या जाओ और वहां पर तुम भरत को सब मेरे विषय में बोल देना है कि कैसे सीता हरी गई, कैसे तुम लंका में गए और किस प्रकार से फिर हमने बाली को मारा, फिर कैसे सीता की खोज की गई, किस प्रकार से सेतु बंद बनाया गया, किस प्रकार से रावण मारा गया और कैसे वहां देवता आए, कैसे दशरथ जी महाराज के दर्शन हुए, फिर किस प्रकार से दशरथ जी महाराज से हमने दो वरदान लिए थे और किस प्रकार से ये राक्षस राज विभीषण राज्य प्राप्त की थी, सब बातें तुम बोल देना और ऐसा भी कह देना कि राम का यश बहुत बड़ा है, बहुत यश बढ़ गया राम का, ये बात भी कहना। देखे ये बात सुनकर के भरत के चेहरे पर क्या रंगत आती है, भरत कैसे बोलता है, भरत की आंखें उस समय कैसी होती हैं, भरत के होठों पर क्या भाव होता है। देखो आदमी का जो मनोभाव है वो मनोभाव कितनों ही कोई छिपाओ उसके चेहरे पर तो आ ही जाता है। तो तुम जाकर के और ये सब देखना, उसके मुख वर्ण के द्वारा सब मालूम चल जाएगा। देखो हनुमान ये संसार की संपत्ति होती ऐसी है, जब तक संपत्तियां नहीं होती है, धन वैभव नहीं होता है, तब तो उसका मेरे से प्रेम होता है, लेकिन जब खूब पैसा धन संपत्ति मलकियत और कुछ यश बढ़ने लग जाए और फिर ये पिता पितामहों का राज्य मिल जाए और फिर केकई जैसी की कुसंगति मिल जाए और फिर जो है वो राजा बन जाए, उसके बाद उसका मन बस में रहे तो न रहे, नहीं तो भाई पता नहीं चलता है किस समय में कब क्या बुद्धि फिसल जाए। इसलिए तुम जाके देख के आना, यदि भरत के मन में जरा सी भी तकलीफ हो कि ये राम यहाँ क्यों आ रहा है, ये क्यों हमारे राज क्यों ये राज्य में बाधा दे, जरा सी भी हो तुम आकर तत्काल हमको बोल देना, हम तो बाबा जंगली जीवन व्यतीत करते करते अभ्यासी हो गए और अब तो हमारे लिए क्या है, अब तो हमारे लिए कोई शत्रु भी नहीं है, हमारे तो दो दो तुम मित्र हो गए, लंका इधर इधर किष्किंधा, तुम दोनों के बीच के जंगलों में आराम से हम पड़े रहेंगे, हनुमान तुम हमारे पास में रहोगे तो फिर हमें क्या चिंता है, तो भाई हमारे कोई राज्य की इच्छा नहीं है, तुम यहां से जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद सोचा कि जाऊं तो सही लेकिन कैसे जाऊं, बंदर बना हुआ जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कैसे करेंगे, एकदम वो अपने आप को मनुष्य बना लिए, बहुत सुंदर मनुष्य बन गए। मनुष्य बनकर के हनुमान जी महाराज आकाश में गए, दौड़े दौड़े जाकर श्रृंगवीर पर्वत पर गए, श्रृंगवीरपुर में गए, श्रृंगवीरपुर पर जाकर निषाद राज से मिलते हुए कहा, निषाद ना निषाद राज गु कौन है, मेरा नाम निषाद राज गु है, आप कौन है, हम महाराज राम के दूत है, हमारा नाम हनुमान है, हम आपको एक बहुत प्रिय संवाद सुनाने के लिए यहाँ राम के द्वारा भेजे हैं, क्या संवाद है, राम अब थोड़ी देर में आपके पास आने वाले हैं। वो बहुत प्रसन्न हो गया और उसके बाद वो आगे गए, राम तीर्थ पार किए, बालुकिनी पार किए, बरुथिनी पार करके, गोमती नदी पार करके, सालवन पार करके और उसके बाद नंदीग्राम में जाकर हनुमान जी महाराज उतरे। नंदीग्राम में उतर करके वहां देखते हैं चारों तरफ बड़ा सुंदर बाग बगीचे, बड़े सुंदर महल, बड़े सुंदर जो है ये वन महल तो थे अयोध्या के ही, परंतु भाई वहां भी जो कुछ बना हुआ था बड़ा अच्छा बना हुआ था, और वहां भी जो है एक कोस की दूरी के ऊपर अयोध्या थी। भरत जी महाराज से मिलना था कि हमें महाराज भरत जी से मिलना है। लोगों ने बताया इधर भरत जी महाराज विराजमान हैं। वे गए और भरत जी के दर्शन किए। उन्होंने मृग चर्म पहन रखा है और एक आश्रमवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भरत जी पतले हो गए हैं और जटा धारण किए हुए हैं और शरीर के ऊपर मिट्टी मैल जमा हुआ है और अपने भाई की याद के अंदर डूबे हुए हैं। फल फूल खाते हैं, तपस्वी वेश है, जटाओं का भार बहुत बढ़ गया है और वो बड़े नियत हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध किए हुए हैं। ब्रह्मर्षि के समान उनका तेज है और दोनों चरण पादुकाओं के ऊपर उन्होंने अपना मस्तक रख रखा है और ऐसे प्रशांत धीर गंभीर चारों वर्णों की रक्षा करने वाले हैं, सारी मर्यादा को रक्षा करने वाले हैं, बड़े बड़े पुरोहितों के द्वारा रक्षित हैं, सब उनके आदेश का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, भरत जी के मंत्री भी लाल कपड़े पहने हुए त्याग पूर्ण जीवन से रहते हैं। उन लोगों के मन में ये भावना है कि जब हमारे राजपुत्र भरत भी त्याग में रहते हैं तो हमको कौन से भोग अच्छे भोगने चाहिए, हमको भी त्याग से ही रहना चाहिए। ऐसा विचार करके वे त्यागपूर्ण जीवन में रहते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे ध्यान में बैठे हुए भरत जी के पास जाकर चुपचाप बोलने लगे, वसंतम दंडकारण्ये ये त्वं चीरजटाधरं अनुशोचसि काकुत्सं सत्वां कौशलमब्रवीत् प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणं अस्मिन् मुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह संगत। जटा धारण करने वाले, दंडकारण्य में निवास करने वाले ककुत्स नंदन दशरथ नंदन श्री राम के प्रति जो आप इतना इस प्रकार से शोक कर रहे हैं, उन राम के प्रति आपको एक बहुत कुशल समाचार सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। आप अपना शोक छोड़ दीजिए और थोड़ी देर में आप भगवान श्री राम को अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ यहाँ आता हुआ देखने ही वाले हैं। निहत्य रावणं राम प्रतिलभ्य च मैथिली उपयाति समृद्धार्थ सहमित्रैर्महाबलैः। उन्होंने रावण को मार दिया है, बड़ा भारी यश प्राप्त कर लिया है। वे अपने बलशाली मित्रों के साथ, तेजस्वी मित्रों के साथ उसी प्रकार से आ रहे हैं, सीता के साथ उसी प्रकार से आ रहे हैं जैसे इंद्र शची के साथ और देवताओं के साथ कहीं प्रवेश करता हो। हनुमान जी की बात सुनकर के भरत जी महाराज इतने आनंदित हुए, आनंद की मूर्छा आगे गिर गए, आनंद की मूर्छा में गिर गए। भरत जी ने थोड़ी देर के बाद अपने मुंह पर पानी वानी छिड़क छिड़का करके पूछा, कौन हो भाई तुम? कोई देवता हो, कोई मनुष्य हो, कौन हो? तुम्हारी वाणी मुझे बहुत प्रिय लगी, मैं तुमको जानता नहीं हूं। हे महामानव तुम कौन हो? तुमने बड़ा अच्छा शुभ संदेश सुनाया हमको, लाखों लाखों गौवे तुमको दान में दी, सैकड़ों सैकड़ों गाय दान में दी और 16 कन्याएं हमने तुमको दान में दी और सब प्रकार के आभूषण वगैरह तुमको दान में दिए। ये सब दशरथ नंदन भरत जी बोलते चले जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज उनके चेहरे का भाव देखकर मुग्ध हो गए। हनुमान जी महाराज के चेहरे पर अपार प्रसन्नता छा गई, आंखों से पानी बरस रहा है। और भाई हनुमान जी महाराज से भरत जी फिर बोलते हैं, मैं बहुत सुंदर समाचार सुन रहा हूं, कई दिनों के बाद आज मुझे ये समाचार सुनने को मिला है, मेरे स्वामी के नाम का कीर्तन किया जा रहा है, मुझे पूरी कथा सुनाओ। तुम जो भी हो, तुम जानो कौन हो क्या नहीं हो, मुझे तो उसकी कथा सुनाओ। उस राम के विषय में जरा सा भी बोलते हो हमारा मन आनंद में डूब जाता है, बताओ कहो कहो कहो। किस प्रकार से तुम राम की कथा कहने वाले हो, तुम राम की कथा को किस प्रकार से जानते हो, बताओ। हनुमान जी ने देखा कि भाई यहां मनुष्य बने पार नहीं पड़ेगी, वापिस अपने बंदर बन गए। और बंदर बने, अरे बंदरों का और राम का कैसे मिलना हुआ? तो कहा अब हम सुनाएंगे आपको। अब हनुमान जी महाराज कहने लगे, देखो हनुमान जी कितने भोले बनकर के बोलते हैं। राम जी ने कहा था कि तुम भरत के सब चेहरे वगैरह को देख करके रहना, इसका मतलब क्या राम जी को भरत के ऊपर विश्वास नहीं था क्या? विश्वास था। हनुमान को ही क्यों भेजा कि देखो कहीं हनुमान अपने जीवन में मेरी भक्ति का अभिमान न कर ले। भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे माँ है वो बच्चे का ध्यान रखती है कि कहीं बच्चा बीमार न हो जाए, कहीं बच्चे को तकलीफ न हो जाए, कहीं बच्चे को यह न हो जाए, कहीं बच्चे को वो न हो जाए, ऐसे जैसे माँ डरती है बच्चे से, ऐसे ही भाई भगवान भी डरते हैं कि इन भक्तों के अंदर कोई अभिमान न आ जाए। इसलिए भगवान ने हनुमान जी को भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा कि देखो हनुमान भरत की भक्ति बड़ी है कि तुम्हारी भक्ति बड़ी है, तुम अपने मन में सोच लो। जो बेचारा राज्य कर रहा है, राज्य का काम देखता है और मेरी भक्ति करता है, एक तुम हो जो तुम भी मेरी भक्ति करते हो, पर कहीं तुम्हारे मन में यह न आ जाए कि मैंने सीता को ऐसे कर लिया, प्राप्त कर लिया, मैंने ये सहायता दी। उधर देखो उसकी भक्ति में जरा सा भी अहंकार नहीं है, ये दिखाने के लिए राम जी ने भेजा। और हनुमान जी महाराज कहने लगे, अब कथा कहते हैं, देखो आपको मालूम ही है ना कि जब माता केकई ने दशरथ जी से वरदान मांग लिए थे, तब इस राज घराने को छोड़कर राम जी महाराज अपने भाई लक्ष्मण और भारिया सीता के साथ वन में चले गए थे, फिर आपको यहाँ पर बुलाया गया था, फिर पिता का संस्कार करने के पश्चात आप चित्रकूट पर्वत पर उनको बुलाने के लिए गए थे, फिर उन्होंने अपने चरण पादुका आपको दी थी और उसके बाद आप अयोध्या आ गए। उसके बाद का वृत्तांत आपको मालूम नहीं है, सो मैं आपको सुनाता हूँ। आपके चले जाने के बाद उनको आपकी बहुत याद आने लगी, वे सोचने लगे कि देखो इस चित्रकूट में बड़ी शांति थी, लेकिन जब से भरत यहाँ आया मुझे जगह जगह भरत की याद आती है, अतः आपकी याद ज्यादा हो जाने से उन्होंने दंडकारण्य में जाकर निवास करना उचित समझा। उनको एक बार मार्ग में विराद नाम का राक्षस मिला, उस विराद का खूब वो लंबा चौड़ा और फिर उसको मार पीट करके खड्डे में डाल दिया। फिर वे सर्वंग ऋषि के आश्रम में गए, फिर सर्वंग ऋषि भी स्वर्ग में चले गए, तो फिर भरद्वाज ऋषि से मिले और उसके बाद में पंचवटी में जाकर दंडकारण्य में रहने लगे। वहां एक बार राम जी के पास में शूर्पणखा नाम की एक कोई रावण की बहन थी, वो आई। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। अब उसके भाई बंधु वहीं रहते थे, 14,000 सैनिक आए, खरदूषण भी आए, लेकिन हमारे राम जी का इतना बल था कि अकेले ने सबका संहार कर दिया। और रावण को जब पता चला, तब रावण ने मारीच को बुला करके और उसको तो हिरण बना करके सीता जी को लुब्ध किया और स्वयं उस आश्रम में एक साधु का रूप बना करके गया और जाकर के उसने सीता का हरण कर लिया। भरत जी सोचते, अरे फिर क्या हुआ? फिर वहां एक जटायु रहता था पक्षीराज, जो आपके दशरथ जी का अनन्य मित्र था। वो जटायु मिले, जटायु ने खूब लड़ाई की, पर क्या करे बेचारा, फिर जटायु की पांख काट दी गई और वो पुष्पक विमान में बैठा करके ले गया और ले जा गया। अब देखो दोनों ही बात आती है, यहां तो आता है पुष्पक विमान, वहां आता है केवल हाथ में ही ले गया। देखो हनुमान जी महाराज या और भाव में बोल रहे हैं, देखो कथा का रूप है ना, कई लोगों के मुंह में जाने के बाद में उसका और का और रूप हो जाता है, वहां एक एक अक्षर नहीं देखना चाहिए। वही देखे हनुमान जी ने पुष्पक विमान क्यों लिया, कि अभी वो पुष्पक विमान से आए थे ना, तो उनको पुष्पक विमान बैठा हुआ था, नहीं तो वो रथ तो उन्होंने तोड़ ही दिया था जटायु जी ने। फिर वो रावण लंका में चला गया, लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा, कितना ही रखो, परंतु भरत जी सीता जी ने तो उसको तिनका समझ समझ के बात करती थी और तिनके को देख करके बात करती थी, सीता ने उसको कोई स्थान नहीं दिया। इधर राम जी ने आश्रम सुना, देखा सीता की खोज की, कबंद को मारा, ऋषिमुख पर्वत पर आए, फिर बाद में थोड़ी मैंने भी राम जी की CID की, मैंने भी CID की कि कौन है कौन नहीं है, तब मुझे पता चल गया कि ये तो बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं। तब मैंने सुग्रीव के साथ मित्रता कराई और फिर बाली को मार दिया। बाली को मारने के बाद फिर राम जी महाराज ने सब बंदरों को भेजा और 10 करोड़ बंदरों को भेजा था। फिर संपाति नाम के गीद ने बताया, तब जो है मैं समुद्र का लंघन करके लंका में गया, वहां मैंने सीता जी के दर्शन किए और राम जी की जो अंगूठी थी वो मैंने सीता जी को दी और सीता जी की चूड़ामणि थी, बोरिया था, वो बोरिया लाकर फिर मैंने राम जी को दिया। फिर राम जी को ऐसा ऐसा लगा जैसे कोई मरने वाले व्यक्ति को अमृत मिल जाता है, राम जी के जी में जी आ गया। फिर राम जी ने बड़ा भारी उद्योग करके बंदरों की सेना ले जा करके और वहां समुद्र के किनारे पड़ाव डाल दिया। इतने में ही रावण के और रावण के भाई में आपस में कलह पैदा हो गया। उसने कहा कि सीता को लौटाओ, उसने कहा नहीं हम नहीं लौटाते, ऐसे करके उसका छोटा भाई राम जी में आकर के मिल गया। फिर हमने वहां पर एक सेतु बनाया, फिर हम चले गए लंका में, खूब वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ, राम जी ने कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा और राम जी ने फिर रावण को मारा। फिर उसके बाद देवता लोग आए और उसके बाद तो हमने वहां आपके पिताजी दशरथ जी के भी दर्शन किए थे, वो भी वहां आए और उन्होंने भी वरदान दे दिया और सब देवताओं ने खूब राम जी की प्रशंसा की। वे राम जी पुष्पक विमान में विराजमान हुए, किष्किंधा आए और किष्किंधा से अब वो भरद्वाज ऋषि के वहां गाके बस 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 आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। ये बात सुनकर के भरत के मन में अपार प्रसन्नता हुई। भरत बहुत प्रसन्न होकर के शत्रुघ्न को कहने लगे, शत्रुघ्न दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च सुगंधमाल्यैर् वादित्रैर् अर्चन्तु शुचयो नराः। शत्रुघ्न हमारी अयोध्या के जितने मंदिर हैं सब मंदिरों की प्रतिमाओं को खूब धो धो करके श्रृंगार करके उनका नया पूजन करके उन पर मालाएं चढ़ाओ। हमारे जितने स्तुतिवादक हैं, पुराणज्ञ हैं, सूत हैं और बाजा बजाने वाले हैं उन सबको बुलाओ, राजा और जितने मंत्री लोग हैं उनको बुलाओ, सेनापति को बुलाओ, सेना की टुकड़ी लेकर आए, ब्राह्मण आए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष है वो जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करके यहाँ नंदीग्राम में राम जी की प्रतीक्षा के लिए जल्दी से जल्दी आए। शत्रुघ्न जी ने कहा अभी ऐसा ही काम होगा। शत्रुघ्न जी ने भरत जी के आदेश से जाकर सब काम पूरा करवाया और लोगों को आदेश दिया कि नंदीग्राम से लेकर अयोध्या का सब मार्ग एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए, ये उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, कहीं तो सड़क ऊंची है कहीं नीची है कहीं खड्डा है पास में, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सफा होना चाहिए। सिंचन्तु पृथ्व्याम कृष्णाम, नंदीग्राम से लेकर के और अयोध्या तक का सारा मार्ग खूब अच्छे जल से छिड़क करके उसको ठंडा बना देना चाहिए, खूब बढ़िया गुलाब जल छिड़क करके सुगंधित बनाओ, ठंडा बनाओ और सब जगह फूलों की वर्षा हो, इस प्रकार का प्रबंध किया जाए रथ लेकर के आए और ये सब काम सूर्योदय से पहले पहले हो जाना चाहिए। सब लोग अपने अपने राजमार्ग में खड़े होकर राम के दर्शन के लिए सब काम छोड़ करके आ जा रहे हैं। इस प्रकार से आज्ञा दी और आठ जो मंत्री थे धृष्टि जयंत विजय सिद्धार्थ अर्थ साधक अशोक मंत्रपाल और सुमंत इनको बड़े बड़े हाथियों के ऊपर बैठा करके हजारों हाथियों को रवाना किया गया अयोध्या से। हजारों हजारों रथ रवाना किए गए, हजारों हजारों घोड़े रवाना किए गए और वो सब लाकर के नंदीग्राम में स्थापित किए गए। वहां पर सेनापतियों ने सब प्रकार की सेना लाकर वहां खड़ी कर दी जिसके पास सब प्रकार के शस्त्र थे। कौशल्या सुमित्रा केकई सब माताएं भी नंदीग्राम में आकर उपस्थित हो गईं। ब्राह्मणों ने अपने हाथ में थाल लेकर के पूजा की सारी सामग्री ले ली और भाई इसमें लिखा है वो